الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علم کو سیکھنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ کون سا فرض ہے؟ حسب حال احکامات سیکھنا، جن احکامات کی بطور خاص ضرورت ہے، مسائل درپیش ہیں، جو معاملہ آدمی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے حوالے سے وہ مسائل، وہ احکامات، یہ سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی بنیادی طور پر اپنے عقائد کے حوالے سے، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہو جائے یا بدمصیبت یا گمراہی والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر ہم باتیں کرتے ہیں تو پھر اعمال کے اعتبار سے، اعمال میں پھر فرائض کے اعتبار سے بات کریں تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی۔ روزے کی حالت میں جب آدمی ہوتا ہے تو بکثرت لوگوں کو مسائل یاد آتے ہیں۔ جی ہاں، جب بھی کوئی عبادت والا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو مسائل بھی یاد آئیں۔ حج عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر پھر ان کو ان کی اہمیت بھی پتہ چلتی کہ اب یہ مسئلہ نہیں پوچھا، یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ تو اس لیے جن چیزوں کے لیے تیاری کر رہے ہوں، جو چیزیں آگے درپیش ہونی ہیں، ان کے پہلے سے ہمیں احکامات سمجھنے بھی چاہیے، سیکھنے بھی چاہیے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔
جزاکم اللہ۔
کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ۔
کیا فرماتے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، حج عمرے پر جانے والے بالخصوص ماشاءاللہ ذوق شوق سے جاتے تو ہیں اور جانا بھی چاہیے، لیکن لاکھوں لاکھ روپے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے دیگر تیاریاں شروع کرتے ہیں، آج کل جیسے حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، تو اب اتنا تو حج کے حوالے سے بھی علم سیکھنا ضروری ہے کہ کس پر حج فرض ہے، تاکہ آدمی اپنا وہ، یہ ایک تو وہ کہ جو حج کے لیے چلا گیا یا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ بھی نہیں کیا ابھی، یہ حکم تو سیکھنا کہ حج فرض کب ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا فیصلہ تو کرے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان پر، جیسے کہ حدیث مبارکہ اپنے سوال سے پہلے تمہیدی کلام میں پڑھی ہے، تو ہر مسلمان پر اپنے حسب حال شریعت مطہرہ کے احکامات سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اب جیسے حج کے حوالے سے ہے، تو حج کرنے والے شخص کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جن دنوں یہ فارم فل ہو رہے ہیں، تو ان دنوں اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کی ملک میں کتنا مال ہے، اور حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی سے فارغ کتنا ہے۔ پھر حج کے جو سفر ہوں گے، تو اس حج کے سفر کے دوران اپنے گھر والوں کے لیے جو اخراجات اس نے چھوڑنے ہیں وہ کتنے ہوں گے، اور اپنے سفر کے اخراجات وہ کتنے ہوں گے۔ تو اگر آدمی کو اپنے اموال پہ نظر کرنے سے یہ بات معلوم ہو کہ میرے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے، اب وہ چاہے پرائز بونڈ کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، مال تجارت وغیرہ کی صورت میں ہو، کہ آدمی کو لگے کہ میں ان اموال کے ذریعے سے بآسانی حج پہ جا بھی سکتا ہوں، اور حج کے ایام میں اپنے ماں باپ جو گھر والے ہیں پیچھے، ان کے اخراجات واپسی تک میں چھوڑ کر بھی جاؤں گا۔ تو اگر کسی آدمی کو ایسا لگتا ہے اور اس کی معلومات میں اس کے اموال کی حیثیت ایسی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے، تو اب اس کو حج کی अदायगी की कोशिश करना लाजिम हो गई। अब उसके ऊपर हज की अदायगी फ़र्ज़ हो जाएगी। अब इस हज की अदायगी के लिए उसे फिर जो भी इस वक्त फॉर्म फिल हो रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से, इनकी कोशिश करें, और अगर ये नाम निकल आता है तो अच्छी बात है, और अगर ना निकल आए तो फिर प्राइवेट किसी भी और दीगर ज़रिए से इसको फिर हज की अदायगी करने की कोशिश करनी होगी। जिस तरह ज़कात में ताखिर करना ये नाजायज़ होता है, तो ऐसे ही जब हज फ़र्ज़ हो जाए तो फ़र्ज़ हज आइंदा कर लूँगा, उस 2 साल बाद कर लूँगा, अभी बच्ची की शादी करनी है तो उसके बाद फिर बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, फिर हज करेंगे, तो इस तरह ताखिर करना जायज़ नहीं होगा।
जिंदगी में तो ये काम खत्म होता ही नहीं।
बिल्कुल
जब भी आपको इस तरह के, और बिलखुसूस हज का फरीजा, जो लोग बिल्कुल बुढ़ापे में जाते हैं, तो उन्हीं से पूछ लिया जाए कि भाई हज बुढ़ापे में ही करना चाहिए या जवानी में करना चाहिए, तो वो भी कहेंगे यार हज तो जवानी में करना चाहिए। अगर ऐसी ताकत इस्तेताद है तो बिल्कुल उस उम्र में ही करना चाहिए, जवानी में ही करना चाहिए। लेकिन एक रिवायत जमील साहब पढ़ी, आला हजरत अलैहिर्रहमा के वालिदे गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब में लिखते हैं कि जिसमें यह फरमाया गया कि लोग अगर किसी अपने दुनियावी काम की गर्ज से हज को मौखर करेंगे, तो वो आदमी देखेगा हाजी हज करके आ गया है और उसका काम अटका हुआ है,
अल्लाहु अकबर।
उसका काम वहीं अटका हुआ है। ऐसे कई लोग हैं, मकान की वजह से बाज़ का तो एक उज़र बनाना है, लेना है, ज़मीन लेनी है, बनाना है। ये तो ख्वाहिशात कभी लिमिटेड होती ही नहीं है। बना भी लिया तो अब उसको असर न हो, फिर कुछ करना है, वो कर लिया तो अब उसमें मजीद कुछ ना कुछ एडिटिंग
कोई ना
करनी
कोई
है,
नया, हर नया दिन कोई ना कोई नया इनको
नया काम,
प्रोग्राम
नया
यही
रुख
सोचते रहते
सामने।
रहेंगे।
अच्छा, फिर जिनकी औलादें हैं बतौर खास उम्र बढ़ती हुई, तो ज़ाहिर है वो भी आगे जवानी की तरफ है, तो 100 मसाइल इस तरह के आते रहते हैं। हम सिर्फ बतौर खास उनकी बात कर रहे हैं कि जो हज के हवाले से साहिबे इस्तेताअत हैं, जो हज के हवाले से साहिबे इस्तेताअत हैं। अब किसी ने किसी तरह भी हज पे चला गया, वो करके आ गया, अभी फर्ज की नियत से किया है तो फर्ज उसका हज अदा हो जाएगा, मुतलक नियत से करेगा तो भी हज उसका अदा हो जाएगा। लेकिन जिनके पास गुंजाइश वुसत सब कुछ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके पास जो सादे राह का मालिक है और उसे कोई भी जालिम बादशाह की कोई रुकावट नहीं, ना कोई और मर्ज, ना कोई ऐसी चीज के जो उसके हज के लिए रुकावट है, और वो हज ना करे, तो उसके लिए कहा गया है कि फिर वो चाहे यहूदियों के मरे या नसरानी। अल्लाह हू अकबर।
अल्लाह,
यानी इस कदर इसकी वईद नाज़रीन किराम वो बयान की गई है। तो बहरहाल हज के अपने ये अहकामात, औरतों के हवाले से भी हज की शरायत और अहकामात हैं। वहाँ सिर्फ एक और जायद चीज़ आ जाती है कि उसके साथ उसके कोई महरम हो और वो उनके साथ ये शरी सफ़र करके हज के लिए जाएं। तो बहरहाल इन चीज़ों को और इन अहकामात को हमें ज़रूर समझना है, और इस वक्त बतौर ख़ास हम इसलिए अर्ज़ कर रहे हैं कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी वो मौका है, और आप उसमें अपनी कोशिश करें। कुरानदाजी में नाम आता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के तहत आप चले जाते हैं, ना भी हो तो फिर भी कईयों के पास इतनी ताकत भी मौजूद होती है और ये सब कुछ होता है कि वो कुछ मजीद लाख ऊपर डालकर वो प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो आप जमीन साहब उनको यही कोशिश करनी।
बिल्कुल, जब हज की फर्जियत हो गई इस्तेताद पाए जाने की सूरत में, तो अब उस हज की अदायगी इनके ऊपर लाजिम है। अब इसके लिए बिलफर्ज ने कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज लेकर भी अपने हज की अदायगी उन्हें करनी होगी।
करनी होगी। और ऐसे कई लोग जो पीछे, जिनके ऊपर इस्तेताअत है, ताकत है, आपने चले कर्ज की बात बताई कि उनके पास ताकतें थी, इस्तेताअत थी, अब खर्च कुछ कर दिया, खर्च करके बैठ गए, अब नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले थे, अब नहीं
तो पहले ये था ना कि ये इस काम से फारिग हो जाऊँ इस काम से, और इस चक्कर में कई साल आगे गुजर जाते हैं, और वक्त के साथ साथ ये मालो असबाब भी कम और ख़त्म होने लगते हैं, आदमी की ताकत कुव्वत में भी कमी आने लगती है। तो बहरहाल जब हज की अदायगी एक दफ़ा लाजिम हो चुकी इस्तेआत की शर्त पाए जाने की सूरत में, तो अब जब तक जिंदा हैं तो उस वक्त तक हज की अदायगी का हुक्म लागू रहेगा। हत्ता कि अगर किसी ने अपनी आखिरी उम्र तक भी हज नहीं किया, हज फर्ज होने के बावजूद, तो उस पर लाजिम है कि कि वो वसीयत करके जाए हज्जे बदल की, कि अब उसके मरने के बाद कोई उसके माल में से, उसके तरके में से उसकी तरफ से हज अदा करे। यानी जब हज फर्ज हो गया तो जब तक इस्तेताअत है खुद ही करना है,
जी
और अब इस्तेताअत ज़ौफुल उम्री की वजह से इतनी अब ताकत ना रही कि ये हज के लिए जा आ सके, अपाहज हो जाते हैं बाज़ लोग, बाज़ सूरतों में अल्लाह हम सबको महफूज रखे फालिज का अटैक हो जाता है, आदमी नहीं सफ़र कर पाता, बाज़ औक़ात बिनाई जाती रहती है, तो अब हज की अदायगी यूँ इस वजह से नहीं कर पा रहा। लेकिन हज जब एक दफ़ा लाजिम हो चुका तो अब उसको हज बदल कराना होगा, यानी अब जब तक जिंदा है और हज की अब ताकत ना रही जिस्मानी एतबार से, तो अब उसको हज बदल करवाना होगा, किसी ऐसे शख्स को हज के लिए उसको कहना होगा जो उसकी तरफ से हज के मुआमलात अदा करे। और अगर हज बदल भी नहीं करवाया अपनी ज़िंदगी में, तो अब वसीयत करके फिर उसको जाना होगी कि मेरे माल से मेरी तरफ से हज बदल करवा देना। तो
यानी
यानी ये
हज्जे बदल के भी अहकामात
हज
होंगे।
बदल के भी अहकाम होंगे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो तौफीक अता फरमाई है माल की सूरत में, इसी तरीके से जिस्मानी ताकत और कुव्वत के एतबार से, तो आदमी को इस दौलत और जिस्मानी ताकत इन दोनों चीज़ों को जब हासिल हैं, तो फिर हज की अदायगी में आदमी को बिल्कुल भी ताखिर नहीं करनी चाहिए। कल 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 का इंतज़ार आदमी को आगे से आगे लेके जाता रहता है। आदमी अगर आज ही उस काम को फाइनल कर ले कि ये काम मुझे करना है, अभी करना है, तो फिर बहुत सारे काम हमारे आसान हल हो जाते हैं। अगर देखा जाए शफीक साहब, एक आम मुहावरा भी है कि जो जिंदगी का एक लुत्फ है वो जवानी में है, ठीक है। तो इबादत का भी जो ज़ौक शौक और मज़ा लुत्फ है वो जवानी ही की इबादत में। आप नमाज ले लें, आप रोज़ा ले लें, इसी तरह हज की अदायगी ले लें, इसी तरीके से आप अपने माल की ज़कात को ले लें। जब आदमी जवान है तो नमाज पढ़ने में भी क़याम तवील कर सकता है, रुकू सुजूद तवील कर सकता है, कई कई रकातें ये पढ़ने की ताकत रखता है। इसी तरह जवान है तो रोज़े भी बकसरत रख सकता है, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी अहतमाम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से अमवाल खर्च करना है, जवान है इसको पता है कि मैं मजीद माल कमाता रहूंगा और अल्लाह ताला और देगा, तो फिर आदमी राह खुदा में खर्च करता रहता है। इसी तरीके से हज, जब हज की अदायगी है तो इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आदमी का जिस्म जो है ना वो खर्च हो रहा होता है। किस तरह कि आपको अपने होटल से हरम पाक मस्जिद हराम तक जाना है, अब किसी को इसमें 1.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना पड़ सकता है, किसी के लिए कम मुसाफत होती है। फिर तवाफ़ काबा है, अब हज के दिनों में रश भी होता है तो तवाफ़ काबा में भी टाइम लगता है। फिर आपको सही करनी है, इस सही के अंदर दौड़ लगाने का जब मकाम आता है तो आपको दौड़ना भी है, जिस मकाम मेलैन अखदरैन इसके दरमियान आपको दौड़ना ये सुन्नत है। फिर इसी तरीके से हज के का जो रुकन आज़म है वकूफ़ अरफा, तो आपको अरफात के मैदान में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करने का मौका मिलेगा। अब ये जो जवान होगा तो इस वक्त जो इसकी कैफियत होगी, फिर इसको आगे मुजदलफा जाना है, मुजदलफा से भी वापसी आना है मीना की तरफ, फिर रमी जिमार के 3 दिन हैं, 13वीं तारीख की भी रमी की सूरत बन जाती है जो सुन्नत भी है। तो इस तरह ये जो जवान को कंकरियां मारने में आसानी, इस इबादत करने में जो उसका ज़ौक शौक होगा, वो यकीनन तसव्वुर करें कि एक ज़ईफ़ुल उमर है वो किस तरह ये रमी करेगा, वो खुद मोहताज होगा कि कोई मुझे व्हील चेयर पर वहाँ तक ले जाए। तवाफ़ करने के अंदर वो एक फेरे के बाद ही वो हाँपता काँपता रहेगा, सही का एक फेरा करने के बाद वो थोड़ा इंतज़ार करेगा फिर आगे चलेगा। तो याद रखें, बुढ़ापे में जिस तरह हमारे ज़बान के जायके ख़राब हो जाते हैं, तो इसी तरह इबादत का लुत्फ भी अगर जवानी में इबादत की आदत ना रही तो बुढ़ापे में फिर वो ज़ौक वो शौक वो इबादत का लुत्फ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको जवानी में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।
माशाल्लाह, और जवानी में ऐसा ज़ौक शौक होगा तो बुढ़ापे में भी वो कायम
बिल्कुल
रहेगा। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा कुछ कहूँगा। जैसे हम देखते हैं बाज़ ऐसे ज़ईफ़ उम्र में भी नहीं, शौक
शौक
इनका
की बात
जिनका शौक जवान है, यानी यूँ
बिल्कुल
कह लें, अभी रमज़ान शरीफ की आमद आमद है। अब रमज़ान मुबारक में देखते हैं तरावी की नमाजें, एक तवील नमाज, एक किरात भी होती है, सवा पारा रोज़ाना पढ़ा जाता है। तो बाज़ ज़ईफ़ुल उम्र वो अफराद तो मस्जिद में पहली सफ़ों में, दूसरी में, तीसरी में, जैसे इमाम साहब, हाफिज़ साहब ने अल्लाह अकबर का वो भी कह लेते हैं,
फौरन
लेकिन जवान कई पीछे बैठे हुए हैं। वो कहाँ है? वो पीछे दरवाज़ों में कहीं इधर उधर बैठे हुए हैं,
वजू खाने पे
वो दुकाने पे, वो
रुकू में
है।
जाने का इंतजार कर रहे हैं।
अब ये सूरत हाल, यानी यहाँ उन जवानों को भी ठीक है भले आए हुए, लेकिन वो ज़ौक शौक इस तरह का नहीं, बल्कि बाज़ सूरतें तो ये होती है कि आप दूसरों को भी तकलीफ़ में मुबतला कर रहे होते हैं।
बिल्कुल
मुनाफिकीन की एक अलामत जो बयान की गई ना कुरान पाक में, वैदा कौमू इला सलाती कौमू कुसाला, जब वो नमाज को कायम करने की तरफ आते हैं तो सुस्ती की वजह, सुस्ती करते हैं उसमें, यानी काहली करते हुए। और उसमें उलमा इकराम ने इस आयत के तहत इन लोगों को वो बयान किया कि जो रकत में भी रुकू में जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, खड़े रहेंगे, पीछे रहेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, फिर मस्जिद मस्जिद में दुनियावी बातें, फिर ऐसे शोर शराबे कि पूरी मस्जिद सुकून वाली कैफियत में एक है और लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, मस्जिदों में भी बाद का तो हर कई किसी में पंखे चल रहे हैं, किसी में बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं, एयर कंडीशन मस्जिद है तो जहाँ पंखे नहीं हैं या लाइट से पंखे चल रहे हैं, नॉर्मल से पंखे चल रहे हैं, अब वहाँ गुफ्तगू की आवाज़ भी सब फैलती है। तो इसलिए मैं उन जवानों से भी कहूँगा कि हमें भी ज़ौक भी पैदा करना है, शौक़ भी पैदा करना है, तरावी के लिए अपने आप को तैयार भी करना है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसके तर्क की आदत आदमी को गुनाहगार बनाती। मर्द हैं या औरतें हैं, इन तमाम के लिए तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा। मर्द कोशिश करें बाजमात एहतमाम के साथ तरावी की नमाज को पढ़ें, बहनें खवातीन या अपने घरों में रहती हुई आप उस तरावी की नमाज का ज़रूर एहतमाम करें, और अभी से ये नीयत और इरादे कर लें कि जब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो कामयाबी मिल ही जाती है। बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि मर्द ही पढ़ेंगे, हमें तो ना कुरान आता है या इतना नहीं आता, वो तरावी नहीं पढ़ती।
खवातीन के लिए भी तरावी की जो नमाज है वो सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें मर्द और औरत का फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ जमात के हवाले से है कि मर्दों को मस्जिद के अंदर जमात से नमाज़ पढ़नी है, खवातीन अपनी इनफरादी तौर पे पढ़ेंगी। तो जितना कुरान पाक आता है तो उतना कुरान पाक तरावी के अंदर पढ़ने की कोशिश करें। बाज़ खवातीन को मिसाल के तौर पे सूरह मुल्क शरीफ उन्हें रोज़ाना पढ़ने की वजह से हिफ्ज़ हो जाती है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन को सूरह यासीन शरीफ याद होती है, सूरह रहमान याद होती है, सूरह वाकिया याद होती है। तो इस तरह और दीगर भी कुरान पाक के दीगर मकामात सूरतें उनको याद होती हैं। तो ये एक मौका होता है तरावी के अंदर कि अगर हम तरावी में जितना कुरान पाक हमें याद है उतना कुरान पाक अपनी तरावी की नमाज में अदा करने की कोशिश करेंगे। तो इससे शफीक सर एक फ़ायदा ये होता है कि रूटीन में जो हमें ज़बान पर जो सूरह फातिहा ख़त्म होती है फ़ौरन एक सूरत
सूरह इखलास,
सूरह इख़लास पढ़ ली, लेकिन एक रूटीन में अगर बिला तवज्जो एक सूरत शुरू हो जाती है तो वो यकसुई बाकी नहीं रहती। अगर हम कुरान पाक के
खैर कर
मुख्तलिफ मकामात
सही बात।
से तवज्जो करके कि अब मैं सूरह यासीन से ये चंद आयतें पढ़ूंगा, अच्छा दूसरी रकत के अंदर सूरह रहमान से मैं कुछ दीगर आयतें पढ़ूंगा, तो इस तरह ये पहली रकत में बिलफ़ सूरह यासीन पढ़ ली, दूसरी रकत में सूरह रहमान से कुछ आयतें पढ़ ली, तो इस तरह ये तवज्जो नमाज की तरफ रहेगी, खुशू खुजू पैदा होगा। या आप पहली 10 रकतों में सूरह यासीन पढ़ लें, आखिरी 10 रकतों में सूरह रहमान पढ़ लें, तो सूरह मुल्क पढ़ लें, तो इससे क्या होगा कि हर रकत में एक नई आयत वो पढ़ने को मौका मिलेगा, तवज्जो बरकरार रहेगी। और इंशाल्लाह अगर इस अंदाज से हमारी इस्लामी बहनें के जिन्हें कुरान पाक की कई सूरतें याद हैं बिलखुसूस सूरह मुल्क, तो मेरा गुमान है कि बकसरत इस्लामी बहनों को याद हो जाती है,
ठीक,
तो वो अपनी तरावी के अंदर सूरह मुल्क की दो दो तीन तीन आयात अगर पढ़ने का मामूल बना लेंगी तो इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर तरावी में पहले कभी ऐसा नहीं किया ये करके देखें, इंशाल्लाह ज़ोक शोक पैदा होगा।
माशाल्लाह जी। बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ।
मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार अत्तारी है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या किसी का दिया हुआ तोहफा सदका खैरात कर सकते हैं?
जी, किसी ने दिया है तोहफा और यह बागे सदका खैरात,
जब किसी ने हमें तोहफा दे दिया और हमारे कब्जे में आ गया तो हम मालिक हो गए। अब मालिक होने के बाद इस में आगे सदका खैरात के हवाले से अगर कोई मौका बन रहा है तो हम उस तोहफे को आगे अल्लाह की राह में सदके के तौर पे दे सकते हैं। शरी हवाले से तो इसमें कोई मुजायका नहीं है।
ठीक,
अलबत्ता बास तोहफे ऐसे होते हैं कि तोहफा देने वाला वो चाहता है कि ये तोहफा जिसको मैं दे रहा हूँ वो इस्तेमाल करे। अब वो अगर सूट है तो वो सूट पहने, इसी तरह अगर वो मिसाल के तौर पे इतर है, परफ्यूम है, वो ये यूज़ करे, या बाज़ औक़ात घड़ी किसी ने तोहफे में दे दी तो वो पहने। तो अब वो जिसने तोहफा दिया होता है वो चाहता है कि ये मेरा दिया हुआ तोहफा मैं इनको पहनते हुए देखूं, इस्तेमाल करते हुए देखूं, तो उनके दिल में खुशी दाखिल करने के लिए हमें उसका इजहार भी करना चाहिए। इस तरह तोहफा देने लेने से क्या होती है, मोहब्बत बढ़ती है।
बिल्कुल।
तो अब अगर तोहफा देने वाले की इसमें रजा है कि मैंने आपको दे दिया, अभी आपका हो गया, अब आपकी मर्जी इस्तेमाल करें या अल्लाह की राह में दे दें।
सही।
आप खुद खर्च करेंगे तो फना हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की राह में देंगे तो ये बाकी रहने वाला माल बन जाएगा। तो ऐसी सोचें, बहरहाल तोहफा देने वाले की बने तो बने, तो अगर तोहफा देने वाले की ये सोच है कि भाई आप मालिक हैं, आप इसको इस्तेमाल करें या अल्लाह की राह में दे दें, जो आप मर्जी आपकी करें, तो फिर आदमी को जो भी तरीका अख्तियार करना है कर सकता है। लेकिन ये देख लें कि बाज़ औक़ात थोड़ी सी बदमज़
अपनी पोजीशन देख लेनी चाहिए उस वक्त के। बाद चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि सामने वाले को पता है कि मैंने इनको दे दी, अब ये इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है, अब उनको कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि आप कोई किसी को दे दे और वो उन पता भी ये इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ कोई भी ये इस्तेमाल भी नहीं करें, तो उनकी पहले से ही अंडरस्टूड जहन में है कि ये किसी को इन्होंने देनी ही है। बाज़ औक़ात उसके सामने ही अगर उसी की दी हुई चीज़ आगे तोहफा में कोई इतनी मोहब्बत से लाया बिलफर्ज, ठीक है, ये अब यही चीज़ उठाकर कहीं शादी ब्याह में कहीं भी कोई गिफ्ट पैक आते ही है ना, अब उन्हीं में से किसी और को उठाकर दे दिया, शरी तौर पर तो ठीक है कब्जा कर लिया आप दे दिया
हो गया,
लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती होगी ना।
अब इसमें वही ना, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है।
हाँ,
अब उसने तो वन साइड एक सूरत बनाई के तोहफा दे दिए, तो अब उस मोहब्बत को बाकी भी रखना है।
ठीक है,
कहीं ये ना हो कि बाद लोग इस हवाले से, यार इनको देने का कोई फायदा तो है नहीं,
इन्होंने आगे दे देनी,
इन्होंने आगे देना होती है, इन्होंने आगे इस्तेमाल करनी होती है, यानी सदका खैरात कर लेते हैं हम, वैसे ही सदका खैरात कर देते हैं,
या सदका खैरात या वैसे किसी को बिल पर देना।
तो इसमें यही कि तोहफा देने वाले की दिल की खुशी को भी सामने रखना चाहिए।
जी बिल्कुल जी। मजीद
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, आजकल गर्मी की वजह से दूध खराब हो जाता है, अगर दूध के अंदर बर्फ डाल दे तो दूध बचता है, नहीं तो दूध खराब हो जाता है, और ग्राहक खरीदने वाले भी कहते हैं दूध के अंदर बर्फ डाल दिया करें, ऐसा करना कैसा, शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
जी, दूध में बर्फ डालना,
दूध में बर्फ डालने का मतलब यह है कि जितनी मिकदार में बर्फ है उतना लीटर पानी दूध के अंदर शामिल हो जाता है। तो अब ये गोया कि दूध में पानी मिलाने वाली एक बात है, तो अगर ख़रीदार को मालूम है कि इस दूध के अंदर कुछ ना कुछ मिकदार पानी की मिलाई गई है बर्फ़ की सूरत में, तो वो अगर इस दूध को लेने पर राज़ी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता बाज़ लोग छुप कर कुछ पानी अलग से डाल देते हैं और इस तरह दूध की मिकदार पानी डालने से बढ़ जाती है, और लोगों को वो ये शो करते हैं कि दूध बिल्कुल खालिस है, तो अब ये धोखा है, मिलावट है, और ये नाजायज अमल होगा। तो इस तरह सौदा करना नाजायज और गुनाह का काम है।
ठीक है, तो इसमें यानी जो नॉर्मल दूध के अंदर जो सबको पता है भी कुछ ना
कुछ मिकदार बर्फ डाली जाती है, तो इसमें कोई यानी जो दूध को बाकी रखने के लिए जो भी फार्मूला अगर इनका होगा कि इतने लीटर दूध में इतनी बर्फ डलेगी, तो जो उर्फन पानी या बर्फ की सूरत में पानी मिलाने का उर्फ है और लोगों को भी पता है, और लोग इसको धोखा नहीं समझते, यानी ये मिलावट जो लोगों के सामने या उनके इल्म में है ये मिलावट से धोखा नहीं है, तो इस तरह खरीदो फरोख में हरज नहीं होगा।
जी, आर्टिफिशियल पलके लगाने का क्या हुक्म है?
आर्टिफिशियल जो पलक हैं तो ये लगाना उस वक्त सूरत में जायज़ होगा जबकि इंसानी बालों की वो आर्टिफिशियल पलकें ना बनी हों, ना खिंजीर के बालों की बनी हों, दीगर जो हलाल जानवर हैं उनके बालों की या दीगर जानवर
प्लास्टिक वगैरह जो आमतौर
या
पर।
बाजों का जो प्लास्टिक या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो असल बाल भी नहीं होते, ना वो इंसानी बाल होते हैं ना किसी जानवर के बाल होते हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ होती है, तो उनके जरिए पलकें मसनूई लगाने में शरण हरज नहीं है। अलबत्ता एक ख्याल यहाँ पर ये रखना होगा कि ये जो पलक मसनूई लगाई जाती हैं तो ये कुदरती पलकों के ऊपर चिपका दी जाती हैं, एक गम जो इसके साथ लगी हुई होती है उसके ज़रिए वो चिपक जाती है। अब जब वुज़ू करेंगे तो वुज़ू करने में इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब चेहरा धोएंगे तो चेहरा धोने में ये जो आर्टिफिशियल पलकें लगी होंगी तो इसके नीचे जो पपूटे की खाल है बारीक सी जिस पर ये चिपकी हुई होंगी उस हिस्से में पानी नहीं पहुंचेगा। अब हो सकता है कि पलकें तो मतलब वो तर हो जाएं और उन पे पानी अच्छी तरह पहुंच जाए, लेकिन जो चिपक की एक आउटलाइन लगी होती है उसके नीचे आँख के पपूटे पे पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर वुजू नहीं होगा। तो जब भी वुजू करने का मौका होगा तो ये पलकें हटानी होंगी, और पलकें हटाने के बाद भी बाज़ औक़ात कुछ उसकी चिपक वो जिल्द पर लगी रह जाती है तो उसको भी थोड़ा सा रब करके रगड़ के उसको हटाना होगा। जैसे कि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि कोई ज़ख़म होता है पट्टी चिपका देते हैं, अब ज़ख़म सही हो गया अब पट्टी की हाजत नहीं रही तो अब वो उसके बाद उसकी एक चिपक
वो
की
भी अपने असरात छोड़ जाती है
हाँ
पट्टी
वो
भी।
चिपक की हल्की सी एक आउटलाइन बन जाती है, तो अब उसकी वजह से पानी उसके नीचे खाल पे नहीं पहुंचता। आमतौर पे जैसे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए
जी ऐसे
जब
ही।
हाँ जब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ब्लड दिया जाता है सिरिंज में तो फिर फौरी तौर पे उसको चिपका दिया जाता है रुई लगा के कॉटन लगा के। अब वो एक आध घंटे बाद अगर कोई हटाएगा तो वो चिपक कुछ ना कुछ आउटलाइन उसकी रह जाती है, तो उसको खुरचना होगा और उसको हटाना होगा ताकि वुजू दुरुस्त हो सके।
यानी इन चीज़ों में बाद वो नॉर्मल लोग यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये लगा सकते हैं, ये इसके पीछे ये वुजू वाला
हमें
और ये
सारे
गुस्त वाले सारे
हाँ
मामला ध्यान
मतलब ये
रखने होते
फैशन तो अपनी जगह,
हैं।
लेकिन हमें शरीयत मुतहरा के दीगर अहकाम को भी तवज्जो में रखना है कि ये हमने लगा तो लिया लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, वुजू गुसल पे कोई हरज तो नहीं आएगा।
जी हाँ बिल्कुल
इसी तरीके से बाज़ ख़वातीन नेल अपने मसनूई नाखून लगा लेती हैं,
जी हाँ।
अब उसके लिए वो कोई ना कोई ऐसी चिपकाने की चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद उसको खींच के हटा भी दिया जाता है, लेकिन वो जो चीज़ नाखून पे चिपकाई गई है वो बआसानी हट सकती है तो उसको हटाना होगा।
उसको हटा। और कई ऐसे हैं कि जो बालों की विग इस्तेमाल करते हैं या मसनू बाल
मसनूई
विग मसनू बाग लगाते हैं। अब ये भी इन्होंने मुझे भी एक ने दारुलता में आके बकायदा दिखाया है, बोले ये मुझसे ये तो ठंडक भी महसूस होती है, ऊपर जाली थी
जाली
नहाए तो भी ठंडक भी लगती है सब कुछ है बिल्कुल, ये आप देखें। मैंने कहा लेके आइएगा, ठीक है लेके आ गए। वो लेके आए तो उन्होंने कहा कि ये यूं, अब वो पूरी उसके गोल यानी बकायदा चिपकने वाली, और वो ऐसे चिपके भी नहीं, पूरा सर का वो हिस्सा गंजा करना होगा, ठीक है उसके ऊपर कोई उनकी अपनी जो भी सोल्यूशन है
गम
वो लगा
वगैरह
कर
सोल्यूशन
फिर करके उसको चिपकाया जाता है। अब वो 15 दिन के लिए फिक्स हो गई, 15 दिन चले 20 दिन चले, अब ना आम नहाना धोना तो उसमें हो जाएगा, लेकिन वो पूरी जो कैप की तरह जिसने पूरा उसको रखना है संभाल कर, तो वो चिपका हुआ हिस्सा है। तो इन
कोई
चीज़ों में लोगों की इस तरफ आमतौर पे तवज्जो नहीं होती, और ये कर भी देते हैं फिर 15 15 दिन मुसलसल। अब इसमें गुस्ल के लिए यानी क्या कहेंगे आप,
अब ऐसी सूरत में ये जो अगर चिपक वाला हिस्सा है तो ये जो गुसल अगर फर्ज हो जाए तो गुसल फर्ज होने की सूरत में सर के बाल और जो खाल सर की है इन मर्दों के लिए बिलखुसूस के बालों की जड़ और बालों की नोक ये मुकम्मल और सर की खाल ये भी धुलना ये ज़रूरी है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ सर पे चिपकाएंगे जिसके नीचे पानी ना पहुंचता हो तो फिर ऐसा ऐसी शे को इस्तेमाल करना ही जायज़ नहीं होगा। तो बहरहाल हमें कोई भी अपने जेबो जेबाइश वाले काम करने हों तो साथ ही साथ उसके बैकग्राउंड में शरी अहकामात कहीं पामाल तो नहीं हो रहे, कहीं शरी खिलाफ वर्जी तो लाजिम नहीं आएगी, तो हमें मुकम्मल तौर पे अपने किसी भी मामले को शरीयत मुतहरा के खिलाफ नहीं करना।
जो ख्वातीन उम्मीद से हों तो रमज़ान शरीफ के रोज़ों के हवाले से उनके लिए क्या हुक्म है, बिलखसूस जबकि विलादत के महीने करीब हों।
इसमें शरीयत मुताहरा ने औरत की कंडीशन पर इस मसले को मौकूफ़ रखा है। यानी अगर औरत की कंडीशन ऐसी है कि माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की वजह से खुद इसकी अपनी जान को नुकसान पहुंच सकता हो, यानी सही अंदेशा जिसको कहें, और या जो बच्चा है उस बच्चे को नुकसान पहुंचने का अगर कभी अंदेशा है, तो फिर इस सूरत में शरीयत मुतहरा ने औरत के लिए इस हालत में ये इजाज़त दी है, रुख्सत दी है कि ये माह रमज़ान मुबारक गुजरने के बाद जब इन मामलात से फारिग हो जाए तो फिर माह रमज़ान के इन दिनों की जिनमें रोज़े नहीं रख पाई उनकी कज़ा करेगी। और बाज़ ख़वातीन को बाज़ औक़ात आखिरी दिनों में भी कोई रोज़ा रखने में कोई तकलीफ़, ना अपने लिए कोई तकलीफ़ का कोई ख़तरा होता है, ना ही बच्चे के हवाले से कोई तकलीफ़ की कोई सूरत बनती है। और उमूमी एतबार से ये जो इस प्रोसेस में ख़वातीन लेडी डॉक्टर से भी राबते में रहती हैं, तो वहाँ से भी पता चलता रहता है कि बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट सही जा रहा है। तो इस हवाले से भी ख़वातीन अपने और बच्चे के हवाले से जब मुतमईन हैं कि कोई ख़तरा नहीं है, तो अब माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना उनके लिए ज़रूरी होगा। महज उम्मीद से होना ये रोज़ा छोड़ने के लिए रुख्सत नहीं है।
इसी तरह जो दूध पिलाती हैं वो भी उनके लिए भी बाज़ूकात है कि बच्चा छोटा है तो दूध पिलाने पे इस पे भी ये सवाल होता है कि ना रखा जाए रोज़ा।
हाँ, तो इसमें भी वही
हुक्म
दो
वही
सूरतें हैं कि अगर बच्चे की जान का कोई ख़तरा नहीं है, बच्चे को दूध भी फराहम किया जा रहा है, बाद सूरतों में बच्चा कोई ने आल्टरनेट कोई दूसरी सूरत ग़िज़ा की उसको दूध का जो पाउडर मिलते हैं दूध बनाने के उससे उसकी नशोनुमा हो रही है, तो इस सूरत में भी औरत को फिर रोज़े रखने होंगे। और अगर ऐसा मामला है कि बच्चे को और कोई ग़िज़ा मुआफिक नहीं है, वो मदर फीड पर ही है और माँ को दूध पिलाने की वजह से इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि मतलब वो रोज़ा पूरा करना दुश्वार और बच्चे की ग़िज़ा मुकम्मल होने में रुकावटें पैदा हो रही हों, तो अब इस सूरत में भी शरीयत मुतहरा ने औरत को इन दिनों में जिसमें यह आरज़ा लाहिक हो और रोज़ा बाद में रखने की इजाज़त अता फरमाई।
जी मजीद वीडियो सवाल।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि एक बंदा बिजनेस के हवाले से सफ़र करता रहता है तो मुसलसल सफ़र करने की वजह से उसे याद नहीं है कि कसर नमाजें उसकी कितनी कज़ा हो गई हैं, तो इसका अदा करने का तरीका इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा।
जी कसर नमाजें कितनी कज़ा हैं ये भी बताएं, और क्या सफ़र में जो नमाजें कज़ा हो जाती हैं तो फिर उनको कसर ही पढ़ना है, अपने शहर आ गए अब भी कसर ही करेंगे?
सफ़र की हालत में जो नमाजें कज़ा हुई हैं तो उनको जब अदा किया जाएगा तो वो उसी रकातों की तादाद के मुताबिक अदा करना होगा जो सफ़र की सूरत में कसर के अहकाम हैं, यानी जोहर असर और ईशा के जो चार फ़र्ज़ होते हैं इनकी कज़ा अब मुसाफिर को करनी है। यानी अब वो सफ़र की हालत में कज़ा हुई थी, अब ये चाहे सफ़र में है या अपने इलाके में है तो इसको दो रकातों के हिसाब से ही उनकी कज़ा करनी है। अब किसी को पता नहीं है कि मैंने इतने बकसरत सफ़र किए हैं और मैं कभी जोहर नहीं पढ़ता था, कभी असर, कभी ईशा नहीं पढ़ता था, तो इसको इनकी काउंटिंग करनी होगी, ज़न गालिब करना होगा, कभी गुमान करना होगा कि मेरे सफ़र कितने कितने दिन तक होते रहे हैं और इसमें कभी जोहर पड़ी, कभी असर पड़ी, कभी ईशा पड़ी, तो इतनी काउंटिंग कम से कम कर ले कि एक तखमीना लगाए कि अक्सर तादाद इसके काउंट में आ जाए कि इतनी मैंने जोहर, इतनी असर और इतनी ईशा ये मेरी सफ़र की हालत में कज़ा हुई थी, तो इतनी काउंटिंग के मुताबिक इसको दो दो रकातें करके जोहर असर और ईशा को कज़ा करना होगा। और याद रखें कि सफ़र ये नमाज के कज़ा करने के लिए कोई उज़र नहीं बनता। नमाज हज़र यानी आप अपने शहर में मौजूद हैं तब भी पढ़नी है, सफ़र में हैं तब भी आपको नमाज पंजगाना वक्त पर अदा करना ज़रूरी है।
सफ़र की हालत में अगर कोई आम नॉर्मल कज़ाए उम्री पड़ता है तो उसको कितनी पढ़नी होगी?
सफ़र की हालत में अगर कोई अपने शहर में जो नमाजों से नहीं पढ़ी थी उनकी कज़ा करना चाहता है तो वो चार रकातों के हिसाब से ही करेगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी जो कंडीशन है यानी मुसाफिर है तो मुसाफिर गुज़श्ता अरसे की जो अपने घर में रह के नमाजें नहीं पढ़ी थी तो उनकी वो दो रकात के ज़रिए कज़ा करेगा, ऐसा नहीं। जिस हालत में नमाज कज़ा हुई थी यानी अपने घर में था वो नमाजें नहीं पढ़ता था, अपने शहर में था, नमाजें नहीं पढ़ता था, तो चार चार रकातें जोहर असर ईशा की इसके ऊपर कज़ा हैं लाजिम। अब ये चाहे तो अपने शहर में पढ़ेगा तब भी चार पढ़ेगा, सफ़र की हालत में कज़ाए उम्री बाज़ लोग रूटीन बना लेते हैं, तो वो सफ़र की हालत में भी अगर वो कज़ाए उम्री रूटीन वाइज अदा कर रहे हैं तो वो चार रकातें ही अदा करेंगे, क्योंकि ये वो नमाजें हैं जो अपने शहर में रहते हुए कज़ा हुई थी। और जो नमाजें सफ़र की हालत में कज़ा हुई हैं तो जिस हालत में नमाज कज़ा हुई थी उसी की रियायत करते हुए इन्हें नमाज अदा करनी है। तो सफ़र की हालत में कज़ा होने वाली ज़ोहर असर ईशा उनकी कज़ा दो रकातें होंगी, और अपने शहर में रहकर कज़ा होने वाली जो नमाजें इनकी चार रकातें कज़ा करनी होंगी।
अल्कोहल वाली चीज़ें यूज़ करना कैसा है, क्या कहते हैं? अब इन्होंने पूछा नहीं है बैरूनी और खाने पीने की, ये क्या?
अल्कोहल का जो खारिजी इस्तेमाल है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की राय यही है कि इसका जो खारिजी इस्तेमाल यानी बॉडी स्प्रे के ज़रिए हो, या जो हमारे घरों में रंग रोगन हो रहे होते हैं, कलर हो रहे होते हैं, पॉलिश हो रही होती है, तो इसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो अल्कोहल का ये जो खारिजी इस्तेमाल है ये जायज़ है, अगर जिस्म पे कपड़े पर किसी जगह अल्कोहल लग जाए तो इससे जिस्म ये कपड़ा नापाक नहीं होता। अच्छा, इसका जो दाखिली इस्तेमाल है यानी अल्कोहल पीना, तो अल्कोहल पीना बाज़ तौर पे तो ये शराब पीने के ही मुतरादिफ़ यूज़ होता है
जी हम,
तो शराब को ही अल्कोहल वो कह रहे होते हैं, तो ये नाजायज़ है, शराब पीना नाजायज़, अल्कोहल नशा आवर मशरूब पीना नाजायज़। अलबत्त कुछ मकदार बाज़ दवाओं में अल्कोहल की डाली जाती है, वो दवा को उसकी उसकी खूबी को उसकी उसको देर पर रखने के लिए उसकी एक मकदार डाली जाती है। तो अल्कोहल का दवाओं की हद तक जो इस्तेमाल है वो जो दाखिली इस्तेमाल है ये दवाओं की हद तक जायज़ है, दवा के अलावा अल्कोहल पीना ये जायज़ नहीं होगा।
जी नाज़रीन इकराम, आपने हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया है, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। दारुल ताले सुन्नत से अपने आप को मरबूत रखें। हमारे सिलसिले का वक्त तो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कई तरह के शरी मसाइल भी आपको दरपेश होते हैं, बिलखसूस अभी ज़कात के और रमज़ान शी में बतौर ख़ास रोज़ों के हवाले से कई ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि जो अपने बारे में सोच रहे होते हैं रोज़ा रखना रुख्सत है नहीं है, और जिस तरह के सवालत भी कुछ हमने शामिल किए हैं। तो दारुलता का नंबर अपने पास आप सेव रखिए, जिन शहरों में बाकायदा दारुलता अहले सुन्नत कायम है तो आप बराह रास्त भी वहाँ जाकर दारुलता अहले सुन्नत से तहरीरी तौर पर फतवा भी हासिल कर सकते हैं, ज़बानी सवालत भी पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुतहरा के अहकाम सीख कर समझ कर और उन पर दुरुस्त तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
हादियो रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।